بادشاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جو بات اس سے پہلے کی تھی وہ یہ بحث کرنا رہے تھے کہ جانور حیوانات ان میں جو شعور ہے وہ اس درجہ ترقی نہیں کرتا جس درجے کے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے. پھر ایسے ہی انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر اس شعور کو دیکھا جائے تو یہ پودوں میں بھی پایا جاتا ہے, اور پودوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قوت نباتات جو بیج ہوتا ہے اس میں ساری خصوصیات شامل ہوتی ہیں, اور بیج اگر اچھا ہو تو پودا بھی اچھا بنتا ہے, اور بیج کے نقائص کے بقدر پودے میں بھی نقائص پیدا ہوتے ہیں, اور یہ جو اس میں نمو پیدا ہوتا ہے اور پودا بڑھتا ہے تو یہ اصل میں محتاج ہوتا ہے بیج کا, اور بیج کے ذریعے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اگر بیج ہی میں وہ چیزیں نہ ہوں تو ان کا ظہور ممکن نہیں. پھر اس کے بعد وہ انسانوں پر آئے ہیں اور انسانوں کی اب خصوصیات جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے خاص طور پہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پودوں میں اللہ نے نہیں رکھی اور اسی طرح حیوانات میں بھی نہیں رکھی, اور کہتے ہیں کہ من خواص ہی ایضاً, اور انسان کی خاص چیزیں کچھ تو پہلے بیان ہو چکی اور کچھ یہ ہیں کہ ان یکون فی نوع الانسان من لہو خلوص الی منبع العلوم العقلیہ, کہ انسان کی جو نوع ہے اس میں خلوص پایا جاتا ہے, اور خالصتاً یہ کہاں جاتا ہے علوم عقلیہ کے منبع میں, علوم عقلیہ جو ہیں اس کی طرف انسان جھکتا ہے, اور انسان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ علوم عقلیہ کے ذریعے اس کے سرچشمے کی طرف جاتا ہے. علوم عقلیہ کے ذریعے سرچشمے کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ عالم غیب کی طرف کیسے متوجہ ہو, یا تلقاها من وحین, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس عقل کے ذریعے وحی کے پیغام تک پہنچتا ہے اور عالم غیب سے اس انسان پر وحی آتی, او حدثن, اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فراست سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے, اور رؤین, یا انسان رؤیت خواب کے ذریعے یہ دیکھتا ہے. وَإِنْ يَكُونَ آخَرُونَ, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, قَدْ تَفَرَّسُوا مِنْ هَذَا الْكَامِلِ آثَارَ الرُّشْدِ وَالْبَرَكَةِ, جو اپنی عقل کے ذریعے پہچان جاتے ہیں کہ ہم میں یہ ایک انسان ایسا ہے جس میں کامل ہونے کے آثار پائے جاتے ہیں, اس انسان میں رشد ہے اور برکت ہے, فَنْفَادُوا لَهُ فِيمَا يَعْمُرُ وَيَنْحَا, اور وہ لوگ اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں حکم کرے کسی سے روکے اس کی اطاعت کرتے ہیں. وَلَيْسَ فَرْدٌ مِنْ اَفْرَادِ الْإِنسَانِ, اور انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, اِلَّا لَهُ قُوَّةُ التَّخَلُّصِ إِلَى الْغَيْبِ بِرُؤْيَةٍ يَرَاهَا, جس انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہو کہ وہ غیب کی طرف خالص توجہ کرے تو اسے خواب اس طرف سے دکھائی نہ دے. او بِرَأْيٍ يَبْصِرُهُ, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے, او حَدِيثٍ يَسْمَعُهُ, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں غیب سے آواز سنائی دیتی ہے, او حَدْثٍ يَتَفَطَّنَ لَهُ, یا کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فراست اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ فتین انسان ہوتا ہے, اِلَّا أَنَّ مِنْهُمُ الْكَامِلَ, ہاں یہ اللہ ان من کامل, ہاں لیکن یہ یاد رکھو کہ کچھ لوگ ان میں سے کامل ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو ناقص ہوتے ہیں, اور ناقص انسان محتاج الکامل, وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کامل کی طرف رجوع کرے. ولہ صفات, اور انسان میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں یحل طورها ان طور قول یحل طورها ان طور صفات البهائم اور اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ جانوروں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں کیونکہ انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں ایسی صفات آتی ہیں جو خدا کی پسندیدہ صفات ہیں جیسے کہ خشوع و خضوع اپنی عبادات میں اختیار کرتا ہے وہ نظافہ اور پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے والعدالہ اور اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ انصاف معاشرے میں پھیلنا چاہیے اور سماحت چاہتا ہے کہ ظہور بوارک الجبروت والملکوت جیسے عالم جبروت اور ملکوت کی بجلیاں اس انسان پر گرتی ہیں اور پھر من استجابت الدعاء وصاحر الکرامات والاحوال والمقامات اور اس موقع پہ پہنچ کے آدمی ایک ایسے جہان میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کی دعا کی قبولیت مسلم ہو جاتی ہے اور کرامتیں اور اس کے احوال اور مقامات سب کے سب سامنے آتے ہیں یہ پورا عبارت کا ترجمہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے انسانوں پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمائی اور انہوں نے اسے شروع یہاں سے کیا کہ انسان کی عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے لوگ ہوتے ہیں ایسے انسان کہ جو علوم عقلیہ کی مدد سے منبع جو علوم کا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں عبارت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو چل رہی ہے یہ کتاب کے عروج کی چیزیں یعنی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے ان عبارتوں میں تو وہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کر دیتے ہیں ان کے زمانے میں ہندوستان میں دلی میں اور پورے ہندوستان میں یہ تین مکاتیب فکر تھے ایک وہ لوگ تھے جن کا حدیث پر قرآن پر بڑی گہری نظر اور کام تھا ان منقولات میں امام سمجھے جاتے تھے فلانے نے کیا لکھا فلانے نے کیا لکھا امام رازی نے کیا لکھا فلان کی تقریر کیا ہے حدیث میں کیا آیا ہے تفسیر میں کیا آیا ہے اور یہ لوگ رحمہ اللہ سب کے سب شاہ ولی اللہ ان کے شاگرد ان کا خاندان تھا اور منقولات میں یہ امام تھے اور ان کے بالمقابل دوسرا جو خاندان اس وقت دہلی اور ہندوستان میں پایا جاتا تھا وہ یہ خیر آبادی حضرات تھے اور فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ امام فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے صاحبزادگان کے پوتے پڑپوتے عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے منقولات میں فلسفے میں اس میں طب میں اس میں منطق میں ان علوم میں اتنا عروج تھا کہ لوگ افغانستان سے ہندوستان سے معقولات کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے تھے حتیٰ کہ خیر آبادی خاندان یہ جو یہاں پر آباد تھا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ مناظرہ کے لیے اہل تشیع ایران سے چل کے ان کے پاس آتے تھے اور یہ علوم نقلیات حاصل کرنے کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پڑھتے تھے اتنا ان کا شوہرا تھا اتنی ان کا اتنا زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی علوم عقلیہ کی کہ اسی زمانے میں حمین سے ایک خاندان آیا حمین قصبہ ہے ایران کا اور انہوں نے آ کر لکھنؤ میں قیام کیا اور لکھنؤ میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے خلاف شیعت کو پڑھا کہ شیعت آخر چیز کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس خاندان نے علوم عقلیہ کو حاصل کیا علوم عقلیہ کے بعد انہوں نے فضلیہ خیر آبادی کے خاندان سے بھی غالباً استفادہ کیا وہ دو بھائی سے ایک لکھنؤ میں رکے اور ایک واپس یہ علم حاصل کر کے چلے گئے اور ان کی اولاد ان کے بیٹے بھی آئے اور جن بیٹوں نے وہ علم حاصل کیا وہ خمینی کے والدین تھے خمینی کے والد اور یہ جو امام خمینی ایران میں جن کا انقلاب آیا ان کے آبا و اجداد اصلا ہندوستان پڑھنے آئے تھے اتنا زیادہ علم کی تھاپ بیٹھی ہوئی تھی کہ شیراز اور مشرق اور ہرات کہاں کہاں سے لوگ ہندوستان میں آتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب حجت اللہ البالغہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچی ہے جن کو عقل میں اللہ نے بڑی رسائی عنایت فرمائی تھی وہ علی سینہ پہ تنقید کرتے تھے وہ علی سینہ کو پڑھاتے تھے وہ علی سینہ کی طب پڑھاتے تھے और फराबी किंदी जितने फलासफर हैं पढ़ने आलम इस्लाम के उनकी किताबें हम तदाबुर थी लोग पढ़ते पढ़ाते थे इनके खानदान में लंबीन की जवायद सलाता थी मुल्ला सदरा की किताबें आना शुरू मुल्ला सदरा 11वीं सदी के बहुत बड़े मौलवी थे वो मसलकन शिया लेकिन कमाल का इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया था फलसफे का मुल्ला सदरा के नाम पे अब भी ईरान में आप जाएं तो जैसे आपके यहां वेन्यूज हैं ये 7th है ये 9th है इब्ला मुल्ला सदरा के जो वेन्यू है देखने के काबिल है इतनी ज्यादा वहां पर चीजें हैं इल्मियत की लोग जो रहते हैं बहरहाल तो ये लोग यहां पर पढ़ने आए फलसफे और इसको हासिल किया और जब इन लोगों के सामने अल्शाबुल्लाह ने मसला ये मुबाइस कही तो इन्होंने घुटने टेक दिए सब हम कर दिया का शाहब रहमतुल्लाह जैसा इल्म किसी इंसान के पास नहीं है इसलिए कि शाहब अपने दौर के मुजद्दिद भी थे तो ये जो इबारतें जो लिखते हैं एक एक फिकरा ऐसा है जिसमें एक एक रिसाला लिखा जाता है जा सकता है अब ये देखिए आप यही जो फिकरा इन्होंने फरमाया है कि इंसानों की नौ में से कुछ लोग ऐसे होते हैं नौ इंसानी में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खालिस तवज्जो उलूम अकलिया के सरचश्मे की तरफ चली जाती है समझने की बात उलूम अकलिया का सरचश्मा है कौन उलूम चाहे अकल के हों और चाहे नकल के हों दोनों का सरचश्मा आलम गैब है वही है वही इल्म मनकूलात में आती है और वही से भी ऊपर की चीज शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अकल है और अकल का सरचश्मा हम कहते हैं आलम गैब है आलम गैब से कोई चीज आती है अकल में इंसान उसकी तरक्की करता है बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है मसलन से देखा कि सेब जमीन पे क्यों गिरा तो ये आलम गैब से एक ख्याल उस इंसान के दिल में डाला गया और ये तरक्की बन गई कि उसने एक रसूल को लिया और उस रसूल की बुनियाद पर आइंदा दुनिया में साइंस की तरक्की शुरू हो गई किसी और इंसान के जहन में ये डाला गया कि रोशनी जो है इस सफर कैसे करती है उसने अब इस पर तहकीक शुरू कर दी लिहाजा ये कि वो साइंस में कहां से कहां पहुंच गया तो उलूम अकलिया का जो सरचश्मा है ये सारे का सारा आलम गैब है आलिम गैब है क्या अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है आलिम गैब शहादत खुदा उसको भी जानने वाला है और जो शहादत है जिस आलिम को भी जानने वाला है तो शहादत और गैब एक दूसरे के मुकाबले में वाकई हुए हैं जैसे सफेद और सियाह एक दूसरे के मुकाबले में वाकई हुए हैं ऊपर और नीचे मशरिक और मगरिब उत्तर दक्कन पश्चिम पूरब ये सब एक दूसरे के मुकाबले में वाकई हुए हैं इसी तरह उलूम अकलिया ये जो हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया आलिम गैब है और आलिम गैब के मुकाबले में आलिम शहादत है कि आलिम शहादत वो है जो हम कुछ देखते हैं और आलिम गैब वो चीज है जो इन असबाब से मावरा है और हम उसको देखते हैं मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम गैब की तशरीह फरमाई आपने चार दरियाओं के मुतल्लिक फरमाया कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा चार दरिया अल्लाह के अर्श के नीचे से बहते हैं आपने ये फरमा दिया कि मैंने जैहून और सैहून को देखा नील और फरात को देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे से बह रहे हैं अब दरिया नील कहां से है इसकी असर अफ्रीका में चले जाए एक चश्मा है जहां से ये फूटता है ब्रिटेनिका वाले ने नील पे जो लिखा है उसका खुलासा यही है और आहिस्ता आहिस्ता और पानी इसमें मिलता चला जाता है हत्ता के दरिया नील बन जाता है लेकिन जितने जितने जुग्राफिये के माहिर हैं या तारीख की बहस करने वाले वो कहते हैं जितने चश्मे इस दरिया में दाखिल होते हैं पानी उससे ज्यादा बढ़ के महसूस होता है ये क्या चीज है ये हम समझते हैं उनके समझने में मुश्किल है इसलिए हम समझते हैं कि हम कहते हैं उस पानी में अल्लाह ताला बरकतों को नाजिल करता है उस पानी का खुदा इजाफा कर देता है ये बरकत के असबाब क्या है किस वजह से नाजिल होती है ये आलिम गैब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अल्लाह के अर्श के नीचे से देखा ये अर्श जो है खुदा का ये कोई बिल्डिंग की तरह नहीं है ये बिल्डिंग है इस पे कोई इस मतलब ये 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 कॉलम है ये बोलता नहीं है ये छत है बोलती नहीं ये जमीन है ये बोलती नहीं है अर्श ऐसे नहीं है अर्श अल्लाह की एक मखलूक है बहुत बड़ी मखलूक है कोई नहीं जानता कि वो क्या है लेकिन उस अर्श में एहसास है उस अर्श में समझने की कुव्वत है उस अर्श में याद रखने की सलाहियत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम पढ़ते हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे इस कलाम को लेके अर्श के पास चले जाते हैं और वहां पर फरिश्ते बात करते हैं और ये तुम्हारा जो कलाम है जो अर्श के गिर्द घूमने लगता है और फिर वहां नाम लेके तुम्हारा कहा जाता है ये फलां इंसान के मुंह से आया हूं फलां इंसान मुझे बनाने वाला है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अल्लाह के अर्श के सामने तुम्हारा तज़किरा हो क्या तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं है वो अर्श से महसूस करता है अर्श उस चीज को इसीलिए कुरान करीम में आया अल्लाह का वल अमल सालिह यरफऊ और जो नेकी के अमल तुम लोग करते हो ये पूरी आयत है ना इलैही यरफऊ अल-कलिमु अत-तय्यिब ये जो पाकीज़ा इलैही यरफऊ अल-कलिमु अत-तय्यिब अल्लाह की तरफ उठते हैं उसकी तरफ उठते हैं पाकीज़ा कलिमात ये जो आदमी कहता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये पाक जुमले सबका अरबी में कहते हैं तैरने को तो जब आदमी तैरता है तो पाक हो जाता है स्विमिंग तैर के पानी में जाता है दूसरी तरफ को जो जिस्म पे गंदगी लगी थी पाक हो जाता है सबका लिल्लाह सुभान अल्लाह हर जगह आपको मिलेगा अल्लाह पाक है मतलब क्या है मतलब यह है कि आदमी कहता है ऐ परवरदिगार तेरे जिम्मे जितने इल्जाम काफिर लगाते हैं शिर्क के कोई कहता है कि इसके अल्लाह ताला की माँ अल्लाह खानदान कोई कहता है कि खुदा के लिए फरिश्ते का उसके साथ ये ताल्लुक है कोई शिर्क का जुमला हिंदुओं को देख ले सिखों ईसाइयों को क्या क्या शिर्क के जुमले खुदा को कहते हैं बंदा कहता है सुभान अल्लाह ऐ रब तू इस सारे इल्जाम से पाक है ऐ अल्लाह तेरी जात इस शिर्क से पाक है ऐ परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह खुदा ने शुरू किया सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाह की तस्बीह बयान करो तो ये जो तस्बीह है ये अल्लाह के पाक होने का इकरार करना है अल्लाह ने फरमाया यसअदुल कलिमु तय्यिब पाकीज़ा कलमा उसकी तरफ जाता है अब ये सुभान अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ है जो कुछ उसने दिया ये पाक कलमा है अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां इससे भी दूर हो जाती आदमी हर रोज पढ़ता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार तरीके इसके बताए आपने फरमाया हर नमाज के बाद 33 और 34 मरतबा पढ़ा करो ला युकय्यिबु क़ाइलुन जो 100 मरतबा इन तीन जुमलों को पढ़ लेता है पढ़ने वाला फिर नाकाम नहीं रहता या तो ये फरमाया कि आखिरत में नाकाम और या ये फरमा दिया कि दुनिया की मुश्किलात में इसके लिए नाकामी नहीं 33 और 34 मरतबा हो गया दूसरा तरीका इरशाद फरमा दिया कि 33 मरतबा पढ़ो फिर 33 मरतबा और 33 मरतबा ये अल्लाह अकबर कहके 99 हो गए सभी मरतबा आखिरी जो मोहर लगानी है ये कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर दो तरीके हो गए तीसरा तरीका आ गया निसाई की रिवायत में आता है एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा है आज एक फरिश्ते ने ख्वाब में मुझे कहा कि तुम अल्लाह की तस्बीह हम्द और अल्लाह अल्लाह की बड़ाई अल्लाह अकबर के बयान करते और तौहीद को छोड़ देते हो मैंने कहा वो क्या है उससे कहा तुम ऐसे किया करो कि ये चारों जुमले 25-25 मरतबा पढ़ा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 75 हो गया 25-25 मरतबा और 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा करो खुदा की तौहीद भी इसमें आ जाएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कर अब एक आदमी ज़ौक है इसका तौहीद का अल्लाह की गवाही का अल्लाह की वहदानियत का वो 25 मरतबा ये पढ़ लेता है फिर तीसरा तरीका बता ये भी ठीक है चौथा तरीका बता दिया फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों तुम 10-10 मरतबा हर नमाज की बात पढ़ा करो कई मरतबा इंसान को जल्दी होती है घर पहुंचना है फोन आना है गाड़ी चल रही है काम काम की गाड़ी आती है सो जाती है फरमाया 10 10 वर्दवा पढ़ा करो और ये तुम पढ़ोगे तो एक दिन में तुम 150 वर्दवा पढ़ लोगे और अल्लाह कयामत में इस 150 को 1500 में तब्दील कर देगा हर नेकी का अजर तुम्हें 10 गुना दे देगा तो 1500 फरमाया तुम क्या समझते हो कि एक दिन में थोड़े हैं मतलब एक है बहुत है तुमने खुदा की बाकी चारों जुमले मतलब ये हो गए तो ये कहां जाते हैं अल्लाह ने इलाही का साजुल कलिम तैयब जुमले सफर करते हैं परवरदिगार की तरफ जहां भी वो है जर को जाते हैं और बाद सीरीज में कहते हैं कि इलाही से मुराद ये है कि अल्लाह की कबूलियत के बाद ये जुमले अर्श की तरफ सफर करते हैं अब अर्श पे जब पहुंचते हैं तो अर्श इन चीजों को सुनता है देखता है महसूस करता है तो ये पाक जुमले हो गए उलूम अक्लियां ये सारे और फिर इसी तरह अल अमल सालिह यरफौ अमल सालिह जो है अल्लाह उसे खुद उठा लेता है अल्लाह देखता है ये अमल किस नियत से किया गया है खुदा उस अमल को उठा लेता है तो सारी चीजें उसकी तरफ जाती हैं अब वहां से क्या होता है वहां से इसकी बरकतें नाजिल होना शुरू होती हैं वहां से फैसले नाजिल होना शुरू होते हैं तो ये जितना कुछ भी इंसान पढ़ता है ये सब के सब उलूम अक्लिया जो हैं उनका मंबा गैब है और गैब इस आलम मुशाहिदा के मुकाबले में है वो गैब का आलम में नजर नहीं आता और कब्र में जाकर सबसे बड़ी चीज मैयत जब मरता है मौत के कब्र तो दूर है नजर के आलम में सबसे बड़ी चीज जो बहुत बड़ी तब्दीलियां वाकई होती हैं एक ये तब्दीली होती है कि इंसान की कुव्वत इख्तियार छिन जाती है कुछ नहीं कर सकता फरिश्ते नजर आना शुरू हो गए अब वो छोड़ उसके सारे वरसा माँ बाप बहन सारी कायनात मिलके चाहे कि इसको वापिस ले कोई कुछ नहीं कर सकता एक ये तब्दीली बहुत बड़ी हो जाती है और एक तब्दीली होती है कि जिस दुनिया को वो आलिम शहादत को छोड़ रहा है ये गैब चलने चला जाता है उसके लिए और वो जो आलिम गैब है आलिम मुशाहिदा में आता है ये थोड़ी तब्दीली ये आलिम गैब गोया किसकी नजरों से फिर जाता है उसे महसूस होता है देखता है कर आप कुछ नहीं सकते हजरत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को तुम नहलाते हो तो मैयत तुम्हें देख रही होती है उसे पता होता है मुझे कौन नहला रहा है और कौन मुझे कफन पहना रहा है लेकिन अब देखे तो क्या करे कुछ भी इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैयत जो है वो अजाब में पड़ जाती है लोगों के रोने की वजह से उसकी एक तशरीह हनफी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ने लिखी है अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह कहते हैं या मुराद ये है कि मैयत अजाब का माना करो तकलीफ में पड़ जाती है अपने रोने वालों की वजह से कि जब के घर वाले रोते हैं और जारो कतार रोते हैं बेख्तियारी की वजह से या उस मोहब्बत ताल्लुक की वजह से जुदाई की वजह से तो मैयत को खुद तर्स आने लगता है कि ओहो मेरे मरने की वजह से इन्हें कितनी तकलीफ हो रही ये तकलीफ उसको पहुंचती मैयत जैसा जिसका ताल्लुक होता है मैयत के साथ जैसी मोहब्बत का ताल्लुक सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक साल बाद मस्जिद नबी में खुतबा दिया खुतबा तो देते ही थे साल गुजर गया तो कहने लगे आज के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इंतकाल हुआ था और अबू बकर एक साल से हंस भी तो नहीं सका यानी ऐसी गिरा लग गई है दिल पे कि उनके बाद अब जिंदगी में हंसना क्या और खुशी क्या मौत बात लोगों की ऐसे ही हो जाती है बाद लोगों को माँ बाप से मोहब्बत बीवी से शौहर से औला किसी की कोई ना कोई ऐसा उसकी मौत हुई और दिल पे ऐसी गिरा लगती है आदमी बरसों हंसना भूल जाता है बरसों तबीयत पे इतना असर रहता है कि वह तब्दीली वाकई हो जाती है ये सब क्या है ये आलिम मुशाहिदा जो था आलिम गैब और आलिम गैब आलिम मुशाहिदा में तब्दील हो गया अब मैयत पर नजर का आलमकारी हुआ रिश्ते आ रहे हैं देखता है उन्हें हैरान होता है कि क्या दुनिया खुल रही है और दूसरी तब्दीली इख्तियार छिन जाता है अब वो हजार मरतबा चाहे कि सुभान अल्लाह कहूँ कुछ नहीं हो सकता अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह हजार मरतबा चाहे कि फरिश्ता भी गुर्ज ना मारे कुछ नहीं कर सकता इख्तियार खत्म हो गया ना नेकी ना बुराई कुछ भी नहीं एंड हो गया ये सब चीजें इंसान के लिए आलिम गैब आलिम मुशाहिदा बनता है और आलिम मुशाहिदा आलिम गैब बन जाता है हजरत फरमाते हैं वहां तक रसाई होती है अकल से ये भी बड़ी अजीब बात करना अकल से रसाई होती है किसी इंसान से कोई पूछे कि अकल क्या बताती है नमाज पढ़ना अच्छा है या ना पढ़ना अच्छा है लोगों की जमीन ना मारना अच्छा है मारना अच्छा है किसी के माल बाप बागात खेती जमीन मकान उस पे कब्जा कर लेना अच्छा है कि ना करना अच्छा जाहिर है कि अकले तरीन कहती है कि जुल्म से बाज रहो अकले तरीन कहती है सच बोलो अब जब आदमी अकल की मान कर इन अच्छे रास्तों पर चलने लगता है किसी के साथ गड़बड़ नहीं कर किसी का माल हड़प नहीं झूठ नहीं जुल्म नहीं ये नहीं ये नहीं ये सब चीजें करता है तो उसका दिल हो जाता है पाक अब ये पाक दिल जो है ना या तलक्का मिन वाग्यन उस पर वही भी आती है फिर वही भी दो तरह की है एक वही जो है जो शरीयत को साबित करती है और अंबिया अलैहिस्सलाम पर वही आती है और उनको नबूवत का बताया जाता है वो इन चीजों के मोहताज नहीं होते उनकी फितर से सलीमा ही इतनी अच्छी होती है पैदाइशी तौर पर ही वो नबी होते हैं उनकी फितरत ही इतनी पाक होती है कि उन्हें जरूरत ही नहीं होती किसी जद्दोजहद की अल्लाह की पाक जात उन्हें इन आयत से महफूज रखती है और वक्त आने पे पैगाम आ जाता है कि आप इस वही को कबूल कर लीजिए और अल्लाह ने आपको नबी बनाया अब बचपन का हाल देख लें उनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी आ गए कहते हैं या मरियम उन्ना लक मरियम ये बच्चा कहां से आ तुम ऐसी औरत तो नहीं हो जो किरदार की तरह फाशारत ही लई उसने इशारा किया उसके बच्चे से पूछो काजू कई तनुकल्ले मोहन कान फिल्मा दे से उन्होंने कहा हम कैसे पूछे इस बच्चे से जो अभी पालने में है चंद दिन का तो बच्चा है कुरान का सबसे बड़ा एहसान उन एहसानात में से कई एक है एक बहुत बड़ा एहसान ईसाई दुनिया पर यह है कि कुरान ने मरियम की पाकीजगी की गवाही दी अगर कुरान ये ना कहता कि मरियम पाक है तो कौन मान सकता कि मरियम पाक है अलैहिस्सलाम यहूदी तो जानते ही थे यहूदी अब भी कहते हैं उस वक्त यहूदियों की हुकूमत भी तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए यहूदियों ने आज तक नहीं माना 2000 साल मसीह अलैहिस्सलाम को गए उन्होंने आज तक नहीं माना कि उनकी वालदा साहिबा के दार की कोई अच्छी खातून थी वो तो हमेशा ही ईसाई उन्हें इतना पाक समझते हैं कि उनको खुदाई में दावेदार ठहराया कुरान ने सही उनकी पोजीशन मुतय्यन की और कुरान ने बताया कि अल्लाह की बंदी थी ना वो खुदा थी और ना ही वो बुरी औरत थी एक पाक सीरत की औरत थी और हमने उसकी तरफ ये किया था और ये किया था और ये किया था कुरान अगर ना कहता तो मरियम अलैहिस्सलाम की पोजीशन ना ईसाई मुरतब कर सके ना यहूदी दिखा सके दोनों इंतहाओं पे चले गए ये कुरान का थोड़ा एहसान है कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई तारीख ऐसी नहीं जिसकी पाकिस्तान की गवाही दे 2000 साल पहले कौन तारीख लिखने वाला था जो 2000 साल पहले किसी ने तारीख लिखी भी वो खुद तारीख मशकूक हो गई कि यहूदियों के दौर था किसने लिखा है आज कोई चीज कोई सबूत है ही नहीं अब जो अंग्रेज हैं बाद में ऐसी तहकीक की उन्हें तो सिर्फ इंजील नाम की कोई किताब आई नहीं थी अब तो हर चीज साइंस के दौर में आगे कैसे मान सकते थे कि मरियम कोई पाक औरत ये तो अल्लाह की किताब है जिसने गवाही दी और गवाही दी उसने 500 साल के ही बात तकरीबन 610 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 610 ईस्वी में जो नबूवत आई है उसने बताया कि मरियम किस शान की औरत थी उन्होंने कहा कि हम कैसे बात करें तुम्हारा छोटा सा बच्चा काल आईनी अब्दुल्ला तो बोला वो बच्चा उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा आता अंगल किताब अल्लाह ने मुझे किताब दी वजअलनी नबिया और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया वजअलनी मुबारकन और खुदा ने मुझे बड़ी बरकत वाला बनाया ऐनमा कुंतु मैं जहां भी रहूं ये वाहिद पैगंबर है जो कहता है ऐनमा कुंतु मैं जहां भी रहूं ये नहीं कहा इस जमीन में रहूंगा आसमान में कहता है जहां भी रहूं मैं बड़ी बरकत वाला हूं वह रम बेवालिदती और मैं अपनी मां का बड़ा ही फरमाबरदार बेटा अगर बाप होता तो यहां कहते वालिदे मैं अपने वालिदैन का फरमाबरदार हूं वालिदे क्या कहते मैं अपने वालिदैन कुछ नहीं बस रम बेवालिदती मां का फरमाबरदार बेटा हूं अब ये सब चीजें क्या है ये कुरान शहादत देता है कि ये लोग ऐसे थे ये आलिम गैब से वही का जो शाह रहमते हैं एक वही की किस्म यह है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को आती है वही की दूसरी किस्म वो है जो फरिश्ते इस तरह से नहीं लाया करते जो नबूवत की वही होती है बल्कि वही कहते हैं किसी के दिल में डाला जाता है इल्हाम उसको कर दिया जाता है कुरान ही साहिब को इस्तेमाल करता है बल्कि पहले आप देखें अब बच्चा है ना उसने कह दिया कि खुदा ने मुझे किताब दी ऐसे 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 ये उसकी पाकीज़गी है ये उसकी नबूवत है बचपन में ये अता हो गई तो इसका मौका नहीं होता कि वो सच बोले दुनिया से बेरगती इख्तियार करे ज़ुल्म ना करे तो तब जाकर आलम-ए-ग़ैब खुलेगा वो अल्लाह का अपना एक निज़ाम है अल्लाह आलम-ए-ग़ैब उस पे खोल देता है नबी अपने बचपन में भी इतना पाक होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उसके यहां बेटा हुआ और वो डरी कि उसके फिरौन के फौजी उसे मार देंगे तो औहैना इलाम में मूसा हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां की तरफ रही की हमने कहा अन अब रही इसे दूध पिला फैजा किस्ते अलैह और जब ये डर लगे कि तेरे बेटे को कोई कत्ल कर देगा तो फिर एक संदूक बना और उसमें बच्चे को डाल और संदूक को बंद करके फिर तू उसे दरिया में बहा यानी फौजी तलाश करते मां सच झूठ करती बचाती के नाम बनी इसराइल के नहीं है और मेरे बच्चे को ना मारो कुछ तो भी तो करती ना वो तो फिर भी तो चार घंटे लगते यहां मौत यकीनी जहां दरिया में संदूक रखो तो डूब जाए फरमाया आप ये कर लो दोनों में फर्क देखा है कि जहां दो चार घंटे लग सकते थे पता नहीं फौजी किस वक्त पहुंचते किस वक्त बिचारी को परेशानी होती उसको आप छोड़ देना इसे और दरिया में डाल देना ये अल्लाह ने बताया कि असबाब में तासीर हम रखा करते हैं मौत देना चाहे तो दे ना देना चाहे तो दरिया में भी मौत नहीं देते इसमें क्या है हमारे लिए वो फौजी और दरिया सब बराबर है फैजा किस पे आने फल के लिए इसे दरिया में बहा दे या कुली वाजुल्ला और अब तुम्हें बताएं तेरे बच्चे को वो उठा लेगा अपनी गोद में जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है यहाँ तो फिर माँ पालती फरमाया हम दुश्मन की गोद में इसे दे देंगे अब माँ डरे नहीं तो क्या करे और फिर फरमाया कि बिल्कुल मुतमईन रहे हम तेरी तरफ इस बच्चे को लौटा देंगे और फिर इस बच्चे को तेरे पास रखेंगे और अल्लाह कहते हैं फिर उसने निकाल लिया वो सारा किस्सा और फिर फरमाते हैं कि अब औरत जो दूध पिलाए बच्चा दूध ना दिए छोटे बच्चे को क्या पता है कि मां का दूध है किसका दूध अल्लाह ने कहा ये है आलिम-ए-ग़ैब अल्लाह ने कहा हर्रमना अलैहिल मराफ़िअ और हमने सारी औरतों का दूध हराम कर दिया था मूसा जिनका दूध अल्लाह ने हराम कर दिया नबी बच्चा कैसे पी सकता है हत्ता जिसकी बहन बोली मैं तुम्हें एक औरत बताऊं जिस बच्चे को दूध पिला सकती है सारी औरतें बेकार गई कोशिश और ले आई और अल्लाह ने फरमाया मां ने जब बच्चे को देखा करीब था कि वो फूट पड़े और अपने बच्चे को चिमटा ले और सारा मसला खुल जाए इंफादत न तुपकी हुई करीब था कि मामला खुल जाता सारा लौला रहतना आला कल्बिहा अगर हम उसके दिल को अपनी मुट्ठी में न ले लेते अल्लाह ने नाम ने इसके दिल को पकड़ लिया कि खबरदार यहां पे सबरी का कोई मुजाहरा नहीं है ममता को काबू में ले आए और हमने कहा कि अनहरी इसे दूध पिला तो दूसरी जगह भी फिर उसके दिल को उसकी ममता को थाम लिया और फिर हमने उसे कहा कि देखा हमारा वादा कैसा सच्चा है हमने कहा देखा तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरफ फेर दिया ये वो चीज है कि बच्चा नबी हो तो बचपन में जिन औरतों का दूध अल्लाह ने हराम कर दिया एक कतरा नहीं पी सका और जिसका दूध अल्लाह ने जायज उसके लिए करार दिया था वही पिया तो नबूवत इन चीजों की मोहताज नहीं होती वो चीज ही और है ये जो इसमें आया है ना वहीना इले हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की मां की तरफ इसको मुफस्सरीन कहते हैं उसके दिल में ये बात डाली फरिश्तों के जरिए से क्या डायरेक्ट डाल दी हज़रत मरियम के मुतल्लिक भी यही आया है कुरान पाक में अल्लाह ने कहा नादत मलाइका हमारे फरिश्तों ने आवाज दी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के मुतल्लिक आया हमारे फरिश्ते आए और उनका इन्नल्लाह तफाके अल्लाह ने आपको चुन लिया है
وطہرک اور اللہ نے آپ کو بالکل پاک دامن رکھنا ہے ہمیشہ طاہر وصفا کے علی نساء العالمین اس کائنات میں اس جتنی عورتیں پائی جاتی ہیں اول نمبر کی اللہ کو جو پسند ہے وہ خاتون تم ہو اے مریم یا مریم مقنتی لرب دے اپنے پروردگار کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کیجئے فسجدی اپنے پروردگار کو سجدہ کیا کیجئے مریم ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کیجئے یہ ساری مریم پر جو چیزیں لا رہے ہیں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں فرشتے لیکن یہ وہ وحی نہیں ہے جو وحی انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے دونوں میں لفظی اشتراک ہے ورڈز اس کے کامن ہیں لیکن وہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا یا تلقاها منہ وحی جو آدمی ایسا اچھا ہوتا ہے اسے پھر وحی آتی ہے یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ اسے الہام ہوتا ہے او حدثن یا اس کو کیا ہوتا ہے وہ آدمی اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ اس انسان میں ایسی چیز ہے کہ وہ علوم کو اس چشمے سے حاصل کرتا ہے اپنی فراست کے ذریعے یعنی وہ آثار قرائن ان چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری میں انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جس چیز کے بارے میں وہ یہ کہہ دیتے تھے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے تھے یہ چیز اب ہو گئی رہنی تجربہ تھا عمر بھر کا عقل کی سوچ اور فکر کی کہ کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے صاحب فراست لوگ یہ سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں یہ سلطنتوں کو بچانے والے ہوتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد جو چیز ہونی ہے آج آئینے میں دکھائے کہ لوگوں 100 سال بعد یہ ہوگا اگر یہ پالیسی تمہاری چلتی رہی میں اس پالیسی کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ 100 سال بعد اس کے یہ اثرات مرتب یہ ہوتے ہیں لیڈر جو قوموں کو 100 سال بعد کی آج دکھاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ بھی کوئی لیڈر ہے جسے یہی پتا نہ ہو کہ 2 سال بعد کیا ہونا ہے 5 سال بعد ملک کے حالات کیا ہو جانے ہیں اور مجھے کیا سٹیپس دینے ہیں اس لیے یہ حضرت حسن کے جو لفظ لائے ہیں نا اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنی فراست سے معلوم کر دے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرے اور یہ چیز خلافت راشدہ میں خلافت عثمانیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی یہ جتنے بڑے بڑے خلفاء تھے وہ صدیوں کے لیے کام کرتے گئے آخر پہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو انگریز آئے تھے یہ انگریز ایسے کام کر کے گئے جو صدیوں پہ محیط تھے انہوں نے کہا 100 سال بعد آبادی یہاں کتنی ہو سکتی ہے 200 سال بعد کی فرق پڑ سکتا ہے ایسا ڈیم بنا جاؤ ایسی ریلوے کی پٹڑیاں بچھا جاؤ اب بھی کئی ایک امیرکنز اور کئی ایک برٹشرز اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں ویسٹرن کے ویسٹرنائز جو ہیں یہ ایسی ایسی اسکیمز بناتے ہیں کہ 50 سال تک چلتی رہے کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کو اسباب کو جمع کر کے سوچتے ہیں اس پہ اور یہی خاصہ جب مسلمانوں کے یہاں علم تھا اور مسلمانوں کے یہاں اچھی سوسائٹیز تھیں تو یہی سوچتے تھے کہ آج کتنے سال بعد کیا ہونے والا ہے پھر کیا ہونے والا ہے پھر کیا ہونے والا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان خلافت کا جب فیصلہ فرمانے لگے تو کہا میرا جی تو چاہتا ہے عثمان کو خلافت دے دوں مگر مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت سخی آدمی ہیں اپنے ذاتی مال میں سے اگرچہ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے لیکن لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا اور پھر فرمایا میں یہ بھی سوچتا ہوں علی کو خلافت دے دوں اور میں علی کو خلافت تو دے دوں لیکن علی رضی اللہ عنہ جتنا لوگوں میں گل مل کے رہتے ہیں یہ علی کے لیے مناسب نہیں ہے چاہیے کہ حکمران کے اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہو کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو دیکھو کیسی کام کی بات فرمایا جب دوستوں میں بیٹھا ہوا تو دوست جانے کے یہ لیڈر ہے اور جب اپنے خواص میں جائے تو وہ جانے کے یہ عوام کا نمائندہ ہے فرمایا دونوں سفتیں پائی جانی چاہیے لیکن علی لوگوں میں اتنا گل مل گئے ہیں کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے آئندہ ان کے بعد 15-20 برس جو خلافت قائم تھی سب میں کام آتے رہے کہ کیا چیز ہو رہی کیا کیا چیز نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی فراست سے اندازہ لگاتا ہے کہ کیا چیزیں آپ اس زمانے میں دیکھیں یہ چیز بدرجہ اتم جہاں پائی جاتی ہے نا یہ جرمنی کے اسکول میں خود دیکھی اور بھی بہت سے ممالک میں बच्चे जितने दाखिल होते हैं छठी सातवीं तक पढ़ते हैं और माहिरीन नफ्सियात बैठ के बच्चों को देखते रहते हैं बस और रिपोर्ट्स लिखते रहते हैं बच्चा जब थोड़ी सी बड़ी उम्र को पहुंचता है वो लिख के दे देते हैं कि ये बच्चा मुस्तकबिल में फलां फलां काम कर सकता है इसलिए काम दिया तो नतीजा ये निकलता है कि गवर्नमेंट कहती है बच्चे को इसमें ट्रेन करो वो लिख देते हैं इस बच्चे को लकड़ी के काम से बड़ी मुनासिबत है इससे फर्नीचर लकड़ी का काम फर्नीचर बनाने लग जाता है हत्ता के है तो हंसी की बात लेकिन एक बार बाल कटवाने के लिए गए तो उससे पूछा कि भी आपको किसने सिखाया सर्टिफिकेट ये देखे फ्रेम लटका हुआ है और मैं छोटा सा था तो बाल काटने का शौक था तो मुझे जो नफ्सियात के मायने से उनका जिनाई बना दो बाल काटता रहा करे ये बहुत अच्छे बाल काट सकता है मैंने कहते खेतों में चले जाए किसान कहता है मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है मैं पढ़ता था मुझे नबातात का जरात का शौक था मुझे ये सर्टिफिकेट दे दिया डॉक्टर है तो अपना बयान करता है यूं बनती है फरासत से कौमें कि जो जिसका फील्ड है उसे उसमें रखा जाए अब होता क्या है जब कौमें तबाह होती हैं तो अब बच्चे की सारी तवज्जो इस तरफ होती है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने माँ बाप कहते हैं नहीं बेटे तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है अब वो डॉक्टर मौत तक नहीं बनता उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती और कंप्यूटर का वो माहिर होता है डॉक्टर हो के भी बुढ़ापे तक कंप्यूटर पे लगा रहता है इसलिए उसकी फील्ड ये है ना अब एक बच्चा है वो बड़ा अच्छा फार्माकोलॉजिस्ट बन सकता है केमिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है ये चीजें करता रहता है वो कहता है नहीं बच्चे तुमने तो मौलवी बनना है वो मौलवी नहीं बन सकता कुछ भी कर लो तो जो फील्ड से हटा के लोग ये रखे जाते हैं ये कौमों की तबाही हो जाती है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे लोग और रुक जाए या फिर उन्हें ख्वाब के जरिए आलम गैब पे खुलता है तीन चीजें कहती है वही के जरिए खुलता है और इसी तरह वो आलिम गैब उन पे खुलता है फरासत के जरिए और रुकियन या उन पे आलिम गैब खुलता है रुकिया के जरिए ख्वाब के इसीलिए लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे पूछते थे अल्लाह के रसूल में क्या पेशा इख्तियार करूं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशे का तायुन कभी फरमा देते थे कि ये काम करो लोगों को बताया कि ज़िराअत करो एक आदमी आया उसने कहा अल्लाह के रसूल क्या काम करूं पर मैं कुछ भी कर लो हो सके तो जानवरों का दवा करने वाले ना बनना उसे उस फील्ड से मना कर दिया अब वही थी फरासत थी ज़हन मुबारक में क्या आया था मना फरमा दिया अपना उस फील्ड को ना इख्तियार करना बाकी जहां चले जाओ पढ़ाने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अंदाजा करो ऐसी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरासत है कमाल की बात इब्न मसूद रजी अल्लाह 16-17 साल के लड़के हैं और बकरियां चरा रहे हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में जा रहे हैं रास्ते में रोका कहा लड़के बकरी को यह दूध देने वाली उसने कहा कि कोई नहीं फरमाया अच्छा कोई ऐसी बकरी तो होगी जो दूध ना देती हो जिस उम्र कोई ना पहुंची उसने कहा जी है फरमा ले आ वो छोटी बच्ची बकरी छोटी सी ले आया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थनों पे हाथ फेरा आपका मौजदा था कि इसमें दूध आ गया इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि दूध हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल लिया और दूध वाली जो बकरियां थी मैंने इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी कि मैं जिस मालिक की बकरियां चराता था उसके माल में खयानत थी अगर मैं पेश कर दे इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान भी नहीं है अभी तो कोई चीज नहीं है लेकिन कुफर के जमाने में भी या उस दौर में भी वो इतने ईमानदार थे कि बकरियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत देखिए इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने मैंने पहला मौजदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा और फिर वो पत्थर का बर्तन मेरे पास था उसने दूध निकाल के मुझे पत्थर का बर्तन दिया और मुझसे फरमाया कि इन्नका गुलामुन मुअल्लम अब्दुल्लाह तुम तो ऐसे लड़के हो जो तालीम के लिए बस मौजूद हो तुम तो तालीम के आदमी हो ये फरमा दी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फिर तालीम ही में हो गए यानी वो 16 साल के थे फिर उनकी उम्र बढ़ी फिर सहाबियत हुई फिर शर्त हासिल हुआ फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक जुमला के लड़के बच्चे तुम तो तालीम के लिए हो बस इतना फरमा देना ऐसा हो गया कि वाकई आपने पहचान लिया कि ये लड़का इसमें तालीम की सलाहियतें और उसकी सलाहियतों को पहचानना ऐसा हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी जवानी थी अगर हिजरत तो आप 16 साल के थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त कितने 26 साल के हो गए इतने ही हुए और फिर उमर रजी अल्लाह के 2 साल 28 29 30 साल के हो गए सैयदना उमर रजी अल्लाह ने जब ये 30 35 बरस के थे तो खत लिखा कूफा वालों को और कहा हजरत उमर रजी अल्लाह ने सबसे पहला कदम उनका कूफा उन्होंने कहा मदीना मुनव्वरा से बिल्ला कहीं नहीं जा सकते अली कहीं नहीं जा सकते उस्मान कहीं नहीं जा सकते शिया हजरत कहते हैं कि सैयदना उमर रजी अल्लाह को डर था कि अगर कहीं चले गए तो बगावत कर देंगे मेरी खिलाफत खत्म हो जाएगी कोई हजरत उमर रजी अल्लाह से पूछे कि हजरत क्यों पाबंदियां लगाई हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा मैंने तुम सबको रोका है मदीना मुनव्वरा में क्योंकि इलाके दिन ब दिन फतह होते जा रहे हैं लोग मुझसे पूछते हैं नए नए मसाइल मैं अकेला फतवा दूं अल्लाह का डर है अल्लाह का खौफ है तुम सब मेरे पास रहो ताकि हम सब मिलजुल के उम्मत के मसाइल को हल करें तुम्हारे इल्म की मुझे जरूरत ये वजह थी इसलिए जब उन्हें कूफा भेजना पड़ा ना इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु को तो कूफा वालों के नाम खत लिखा होगा और सरत अला नफसी ये अब्दुल्ला कलीफुन मुलियल इल्म एक बर्तन है जिसमें इल्म भरा हुआ है और मैं अब्दुल्ला को भेज रहा हूँ कूफा वालों तुम्हारे पास इससे इल्म हासिल करना और सरत अला नफसी उमर अपनी जान की कुर्बानी देके इसे भेज रहा है मतलब ये मुझे अपनी जान से ज्यादा ये अजीज है अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु अली रजी अल्लाह अन्हु एक मौके पे बेख्तियार हाथ उठाए और कहा अल्लाह जिस तरह कूफा को इब्ने मसूद ने इल्म से भर दिया अल्लाह उसकी कब्र को तू नूर से भर ऐसे बड़े लोग अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द अलकमा और अस्वद सारा इल्म उन लोगों ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने एक दिन एक अपने शागिर्द को उठा दिया और फरमाया मुझे खाली करके रहोगे सारे इल्म का तुमने मुझसे ले लिया और अलकमा और इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु इनके शागिर्दों में आप आगे देखें तो ये इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह ने बड़ा इल्म इन लोगों से हासिल किया अलकमा और अस्वद दोनों के शागिर्द थे नखई और नखई का इल्म और अम्मार इमाम हुनीफा रहमतुल्लाह के उस्ताद थे इमाम हुनीफा थे इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ और पूरी फिकह हनफी दुनिया में जो फैली हुई है इसकी असल अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और सैयदना अली और उमर रजी अल्लाह अन्हु ये तीन आदमी हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम था कि इस आदमी में देखते ही बस एक जुमला फरमाया कि अब्दुल्लाह तुम तो तालीम के आदमी हो ये चीज सलाहियत कि आपकी फरादत जान जाते थे कौन आदमी किस चीज के काबिल किसी ने फरमाया बड़ी मुश्किल हदीस है इसके हल में अज़मा कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा रिसाला लिखा है इसका हल बड़ा मुश्किल है आपने फरमाया मेरे पास खिलाफत अगर अली को मिले तो इसका अहल है लेकिन मुझे पता है तुम इसे खिलाफत नहीं दोगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा होने के अहल हैं इसीलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत आखिरी दिनों में करने के लिए ये बनू अब्बास और बनू हाशिम गए तो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु चचा थे उन्होंने बाहर निकल के कहा कि अली मैं अपने खानदान के चेहरे खूब जानता हूं कि वफात से पहले इन लोगों के चेहरे में रंगत की तब्दीली जो हो जाती है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो गई और अब ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम की बात है तो अली अपने लिए खिलाफत का कुछ कर लो तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे उन्होंने कहा मैं बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं करूंगा मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा वजह क्या वजह यह थी कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा जाते तो चौथे दर्जे में भी खिलाफत ना आती मना फरमा देते तो चौथे दर्जे में भी खिलाफत ना आती इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अली रजी अल्लाह अन्हु में खिलाफत की सलाह उमर रजी अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे फरमाया फलम अराब परियन मैंने आज रात देखा डॉल निकाल रहे थे लोग कुएं में पानी के ख्वाब में देखा और मैंने देखा कि मेरे बाद एक आदमी ने डॉल निकाला और वो थोड़ा थोड़ा सही था और आपने फरमाया ये अबू बकर थे और फिर मैंने एक ऐसा आदमी देखा बड़ा जीनियस अबकरी ऐसा आदमी जिस जैसा जहीन दाना अबकरी का क्या तर्जमा एक लफ्ज जीनियस का लफ्ज थोड़ा और मैं ऐसा अब करी तो मैंने देखा ही नहीं इस कुकत से उसने पानी निकाला कुएं से कमाल कर दिया मैंने देखा तो ये तो उमर थी और फिर फरमाया रस्सी और फिर फरमाया फिर जोड़ी गई फिर उस्मान से तो वगैरह सही हदीस में काफी चीजें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे ना देख देखते थे ये फरासत वो नबी की फरासत पे तो खैर क्या कहने इस तरह अपने बाद वाले जानिशीनों को देखो और वो जन
हजरत ने फरमाया कि देखो कि कभी कभी ख्वाब के जरिए इंसान की रहनुमाई होती है उन चीजों की तरफ रहनुमाई होती है आलमे तकवीनियात तकवीनियात की रहनुमाई ऐसी होती है
जैसे बता दिया ख्वाब में कि तुम्हारे यहाँ पोता होगा तुम्हारे यहाँ बेटा होगा वालदा के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है नुकसान हो जाएगा कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह जो लोग ताबीर का इल्म जानते हैं वो उसकी ताबीर फिर कर देते हैं ख्वाब से ऐसे रहनुमाई होती है और आम आवाम सबके साथ मुश्तरिक मामला है जो भी ख्वाब से मुनासबत रखता है उसको ऐसी चीज बताई जाती है बाज लोग होते हैं रोज ही ख्वाब देखने होते हैं उन्होंने तो उनके साथ क्या होता है बाज होते हैं कई महीनों में ख्वाब आता है उस आदमी को कभी कभी जिसकी मोहब्बत ताल्लुक जानिशीनी खिलाफत ऐसी चीजें होती हैं महीनों में दिखाया जाता है कभी कोई बहुत अहम मसला उसकी जिंदगी का अब ताबीर कोई देता है कि अच्छा ये होने वाला है और कभी सबको समझ आ जाती है ये होने वाला है ये तकवीनियात की रहनुमाई होती है और कभी रहनुमाई होती है ख्वाब के जरिए से अलूम वो तकवीनियात से बहुत बड़ी चीज है हदीस समझा दी जाती है आयत समझा दी जाती है मसला बता दिया जाता है डॉक्टर है ना डॉक्टर को ख्वाब में दिखा दिया जाता है कि ये बीमारी है और ये उसका इलाज है डॉक्टर को बता दिया जाता है वो कहता है ऐसा मरीज पता नहीं क्या ख्वाब है वो मरीज चंद दिन बाद आ रहा होता है ये देखो तकवीनियात में ऐसी रहनुमाइयां होती है ये सैयद अलम उल हुदा के शिया के मुज्तहिद बड़ा मुकाम है शिया में उनका बड़ा मुकाम बड़े बड़े लोग उनके इल्म के सामने नहीं कह सकते क्या सुन्नी और क्या शिया बड़ा मुकाम है शख्स का इल्म अलूम में फलसफे का माहिर था कमाल का फलसफा उसका और अरबी अदबियत अरबी शेर शायरी वगैरह वगैरह बड़ा कमाल से हासिल किया कहता था कि मैंने ख्वाब में देखा साहबजादी साहिबा शीफ लाई है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और एक उंगली उनकी पकड़ी हुई है सैयदना हसन ने और एक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो आके मेरे कमरे में दाखिल हुई है मैं पढ़ रहा था उसके खड़ा हो गया और बड़ी तासीम की उनकी तो उन्होंने अपने दोनों बेटों से उंगलियां छुड़ाई और मेरे हवाले किया और कहा मेरे दोनों बेटों को पढ़ाओ सुबह उठ के बड़े हैरान कि मेरे साथ क्या हुआ है और लिखा है कि उसी दिन दोपहर में एक औरत को मैंने आते देखा और पूरे हिजाब में सब चीजें और दो बच्चे बिल्कुल जैसे मैंने ख्वाब में देखा था ऐसी उसकी उंगलियां पकड़ के मां से ले आ रहे हैं और मां ने कहा ये मेरा एक बेटा है रजी और एक है मुर्तजा इन दोनों को आपके हवाले करती हूँ मेरे बेटों को आलिम दीन बना ये बस यही सैयद रजी है जिससे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु खुतबात को जमा करके ये नहजुल बलागा शियों की किताब है ये इसकी जमा की हुई और उसका बड़ा भाई मुर्तजा शिया के अइमाए मुज्तहिदीन में से था हम लोग चूंकि उनकी चीजें पढ़ते नहीं ना और ये पढ़ते हैं तो संजीदगी से नहीं इसलिए हमें पता नहीं है वरना वो भी उनके पास भी कोई ना कोई चीज है इल्म है जो कुछ भी है तो वो कहते हैं फिर मुझे ताबीर समझ में आई कि ओ रात को ये जो दो बच्चों को मैंने देखा था ये जो मेरे अब शागिर्द बनने आए हैं इसका मतलब ये है कि इनका दुनिया में बड़ा मुकाम और मुकाम ऐसा है रजी का मुकाम खास तौर पर ऐसा है कि जो सर्च नाव अरबी अदब वगैरह पढ़ते हैं वो कोई सूरत ही नहीं है कि जमक्षरी और रजी से इस्तेफादा ना कर सके ऐसी उन्होंने ग्रामर रजी की और ये चीजें सेट की हैं क्योंकि गुजरे हुए हजार साल होते हैं मगर अब तक अहले सुन्नत वल जमात को उलमा उनकी किताबों से इस्तेफादा करते हैं वो उलमा जिन्होंने पढ़ना हो जिन्हें पता ही ना हो रजी कौन है उनका तो कोई जिक्र नहीं लेकिन हमने अपने साथ से सुना इतने कट्टर मुखालिफ थे शिया के कुछ कम की बात नहीं करते थे और जब ये बातें आती थी तो कहते थे रजी ने कमाल किया रजी ने जुमला लिखा है रजी ने ये कहा है بندہ علم ہو تو ایسا کہ مخالف بھی ماننے بھی اتنا تو مجبور نہ کہ علم بھئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا, ایک ججڑا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا, انہوں نے کہا علی سے فتوا لے کے آؤ. تو حکومتیں تو الگ الگ تھی, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس خط کو پڑھا اور ہنسے اور فرمایا الحمدللہ علم اب بھی ہمارے ہی پاس ہے کہ ہمارے مخالفین فتوے کے لیے ہماری طرف آتے ہیں. تو یہ چیز تو ہونی چاہیے. وہ اتنا بڑا آدمی بنا رضی, وہ کیا تھا, آپ کے ذریعے رہنمائی کی گئی کہ اب جو آ رہے ہیں نا دو یہ بچے, ان پہ محنت کرنی ہے توجہ. یہ چیز ہے رکین کہ دوسری طرح کا خواب آتا ہے, وہی کی ہے تشریح ہو گئی, قرآن پاک کی آیت پنس گئی, سویا آدمی اور سوتے سوجا سو رہا خواب میں دیکھا کہ فلاں کتاب تھا اس کتاب کو دیکھا. تو یہ چیزوں یہ چیزیں بتائی جاتی. امام احمد بن حنبل احمد اللہ نے ایک جگہ فرمایا, یہ جو حنابلہ کے تراجم میں اس میں ایک جگہ آیا ہے. امام احمد بن حنبل احمد اللہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا, اسے سوائے کتابوں کی زندگی میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی, ہر وقت پڑھتا رہتا تھا. ہاں اس زمانے میں کلمی کتابیں ہوتی تھی. فرمایا میں نے ایک دن سے کہا کہ تمہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں, اس نے کہا احمد علم جیسی کوئی چیز, کتابوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں جس سے انسان کو دلچسپی. کہنے کے انتقال ہو گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا حشر کیا ہوا ہے مجھے دکھایا جائے. تو دیکھا جنت میں ایک گھر دیا گیا ہے, تو میں مل کے اس سے بڑا خوش ہوا. اور جب اس کا گھر میں نے دیکھا جنت کا وہ, تو ہر طرف کتابیں ہی کتابیں, حتیٰ کہ دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی اور چھت بھی کتابوں کا پڑا ہوا. تو میں نے کہا یہ تیرے گھر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بلایا تھا, فرمایا ہم راضی ہیں تو اس سے کوئی چیز مانگنی ہو. میں نے کہا ایک ایسا گھر دے دیں جس میں ہر طرف کتابوں ہی کا گھر, محل بنا کے پورا کتابوں کا دے دیا, میں ہر وقت یہاں بھی پڑھتا رہتا. روڑیاں ایسے خواب ہوتے ہیں, تکوینیات, آخرت دکھائی دیتی, موت سے پہلے بڑی چیزیں پیش آتی ہیں معاشرے میں. آدمی اگر ان پہ غور کرے نا, وہ خواب وہ دنیا پھر جاتے. کیا سب بتاتے ہیں, وہیں یقون آپ تفبسو من حاضر کامل رشت و برکا فن قاضو لہو فیما یامر و ینہا. پھر اس کے بعد جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جن پر وحی ہو جائے یا اپنی فراست سے وہ کئی سال بیشتر اقدامات کر سکیں یا انہیں خواب آنے لگیں, تو تم دیکھو گے معاشرے میں کچھ لوگ پھر ایسے بھی خدا پیدا کرتا ہے جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس ہدایت ہے, یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس برکت ہے, تو لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں, وہ روک دیتا ہے تو رک جاتے ہیں, کام کا کہتا ہے تو کر. یعنی شعور باشعور اقوام جو ہوتی ہیں اپنے لیڈرز کو دیکھ لیتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ کے قابل ہے, اس سے فلاں بات کہی تھی, یہ پیش آ گئی, اس سے یہ پالیسی دی تھی, اس پالیسی سے ملک کو فائدہ پہنچا, تو لہٰذا یہ جو بات کہے مان لینی چاہیے. آرمی میں آپ دیکھ لیں کتنے ہی آفیسر ہیں, کوئی جنرل کوئی بڑا آدمی تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے بچوں یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے, دو چار مرتبہ یگ آفیسر اس کی بات سنتے ہیں, جب وہی ہوتا ہے تو انہیں یقین آ جاتا ہے, کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی نظر بڑی رسی ہے یہ جو فیصلے کرتا ہے. سیاسی لیڈرز اگر ہوں ایسے وہ بھی کرتے ہیں ایسی بات, جو کہتے ہیں یہ پالیسی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اگر ہو دنیا میں کئی ایک پائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوتے تو الگ بات ہے, لیکن دنیا میں کئی ایک لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے, لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور قومیں اس چیز کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. یہ ابھی حال ہی میں تو نہیں, اب تو کئی مہینے ہو گئے, وہ ہندو ہے نا اس سے کتاب لکھی ہے, کانگریس پارٹی نے نکال دیا, اسے بڑی تعریف کی مسٹر جناح صاحب کی, اور بڑی وزیر خارجہ رہا ہیں جسونت سنگھ, اس کی کتاب آئی, اس نے اس میں لکھا ہے, اس نے کہا جب پاکستان بنا اور ہم لوگ جنگ منسٹر تھے تو نہرو نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اس پاکستان سے نبٹنا ضروری ہے, کبھی بھی یہ بڑی طاقت بن گیا تو مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں بارڈر اگر کھل گئے تو ہندوستان کس جائے گا, ہم تو سینڈوچ بن جائیں گے, درمیان میں آئیں گے, ان کو الگ کرو. 18 سال ہم نے محنت کی پاکستان کو توڑنے کے لیے, तभी नहीं ऐसे ना कि मिशन की और मगरबी महाज को भी दोनों खुल जाएं तो अपनी बहुत कांका भेजे कि हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है। और तजवीज ये आई नेहरू ने कहा कि इनके निजाम तालीम को किसी तरह बंगाल में कमजोर करो हिंदू टीचर पढ़ती करो। तो हिंदू टीचर जब मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिल हुए तो उन्होंने पहले दिन से बच्चों के जहन में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा शुरू की कि मगरबी पाकिस्तान तुम्हें खा गया है मशरकी पाकिस्तान का क्या होगा मशरकी पाकिस्तान का क्या होगा। यहां तक कि 18 सालों में हमने एक नस्ल ऐसी तैयार कर दी जो मगरबी पाकिस्तान के नाम पे भी टूटती थी और फिर जो जंग छिड़ी तो हमें अंदरूनी तौर पर मदद मिली और फौज नाकाम। ये लीडरशिप भी है चाहे हमारे खिलाफ है कुछ भी है लीडरशिप तो है ना कि 18 साल लगा दिए उस आदमी ने महसूस कर लिया कि ये होने वाला है मशरिक मगरिब दोनों बॉर्डर अगर खुल गए तो तबाह हो जाएंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए लोग सोचते ही हैं। ये वो चीजें हैं फल शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब लोग देखते हैं कि हमारे लीडर पे ये चीजें आ गई हैं तो फिर लोग उसकी बात मानते भी हैं और लोग उसकी बात उसके किसी बात से रोकता है तो रुक